ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2011 की मुरलियां चल रही है। पिछले रविवार हम सब ने 18 जनवरी की मुरली सुनी थी, याद है? और आज 2 फरवरी 2011 की मुरली है। बहुत बच्चे आ गए हैं, डबल विदेशी भी बहुत आ गए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं बच्चे। तो बाबा दूर दूर से आए हुए बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी कहते हैं ना, सबसे दूर से कौन आता है? सबसे दूर से कौन आता है? शिव बाबा आता है। शिव बाबा परम धाम से आता है और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आता है। अब दोनों ही बहुत दूर है, तो क्या अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? तो अमेरिका तो फिर भी इसी दुनिया में है, उस समय अमेरिका से भी बहुत आ गए होंगे भाई बहने। तो बाबा अपने बच्चों के भाग्य को देख इतने खुश है जो बात मत पूछो। बच्चे तो उस प्लेन से आए, लेकिन बाबा उनको किस रूप में देखते हैं? प्यार के प्लेन में आए। कौन सा हवाई जहाज? प्यार का हवाई जहाज। तो बाबा भी तो उड़ उड़ करके नीचे आए हैं, तो इतना प्यार किया है आज बाबा ने बच्चों को, और बच्चों के भाग्य की सराहना की है। सचमुच अगर आज की मुरली आप अपने साथ सदा ही रखें तो आपकी खुशी बहुत बढ़ जाएगी। कभी भी उदास हो, थोड़ा निराश हो, या कोई ऐसी बात हो जिसमें आपका उत्साह कम हो जाए, उस समय ये मुरली पढ़ना, तो देखो आपके अंदर फिर से वही उमंग उत्साह आ जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बहुत लंबी भी है। आज 26/7/2026 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 2/2/2011 की। हेडिंग है अपने भाग्य, अपने से लगाते जाना ये सारे महावाक्य। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख, सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। क्या करो? अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख, सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। खुद भी संतुष्ट रहो और दूसरों को अपनी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ, क्योंकि इस समय दुनिया में हर एक असंतुष्ट है। इच्छाएं तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो दुख अनुभव करते हैं उससे भी कितने असंतुष्ट हैं। और बाबा ने हम बच्चों को इतनी प्राप्तियां कराई है, तो हमारा फर्ज है सबको वो संतुष्टता का अनुभव कराना। कैसे? अपनी दृष्टि से, वृत्ति से और प्रवृत्ति से, व्यवहार से। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे हैं? परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हरेक बच्चे के मस्तक में अब क्या क्या भाग्य देखा है बाबा ने हम बच्चों के मस्तक में, वो बाबा वर्णन करते हैं। तो आज बाप दादा हरेक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। महसूस करो अपने मस्तक पर कितनी भाग्य की रेखाएं हैं। बाबा तो देख रहे हैं पर हमें भी तो महसूस करना है। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है। क्यों क्यों किसी को प्राप्त नहीं है? क्योंकि आपको भाग्य देने वाला कौन है? कौन दे रहा है हमें भाग्य? स्वयं भाग्य विधाता। जो स्वयं भाग्य विधाता हमको भाग्य दे तो कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। हर एक के मस्तक में पहले तो बाबा भी क्या क्या भाग्य देख रहे हैं। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। महसूस करो हमारे मस्तक पर कौन सा सितारा चमक रहा है? भाग्य का सितारा चमक रहा है। मुख में क्या चमक रहा है? मुख में भी चमक है ना, एक तो मस्तक पर, दूसरा मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। ये सब कौन सी रेखाएं हैं? भाग्य की रेखाएं। कौन कौन सी? हाँ, बाबा बस वर्णन करते हैं। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है, मुख से मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है, हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है, पांव में क्या चमक रहा है? पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है ना, एक एक अंग का भाग्य का वर्णन होता रहता है हमारे चित्रों में भी। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है, ऐसे नहीं बना अपने आप, भाग्य विधाता बाप ने ये भाग्य बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, पीठ को थपथपाओ, वाह हम वाह हम, वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। वाह तो भाग्य की प्रलब्ध है, लेकिन यहाँ ये संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ सुख है, सतयुग के सुख से भी श्रेष्ठ सुख है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रलब्ध है, इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रलब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ अपने भाग्य में। कुछ भी होता रहे, दुनिया में हलचल है, पर आप अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? क्या मुख से निकलता है जब स्मृति में लाएंगे अपना भाग्य, वाह मेरा भाग्य। गाओ, वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है, तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं? हाँ, बाबा पूछते हैं, जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं, या कभी कभी जानते हो, या सदा जानते हो? सदा नशा रहता है या कभी कभी? हाँ, बाबा को ये अच्छा लगता कहना, सदा या कभी कभी। तो जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं, या कभी कभी जानते हो? सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं ना, आपको क्या मिला है? आपकी खुशी को देखते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, तो आपसे पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग क्या उत्तर देते हो? क्या उत्तर देते हो? जो पाना था वो पा लिया है। हाँ, पा लिया है। हाथ उठाओ, देखो सब हाथ उठा रहे, पा लिया है, जो पाना था सब पा लिया है। अच्छा, पा लिया है। फिर देखो बाबा आश्चर्य भी दिखाते हैं, पा लिया है। फलक से कहते हो कि कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना, ये फखुर नशा है कि अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं हमारे पास। और मिला कैसे ये भाग्य, मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया, तो भाग्य मिल गया। कैसे मिला भाग्य? बहुत कम पुरुषार्थ किया, लेकिन भगवान को जाना, माना, अपना बनाया, तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। भाग्यवान जो समझते अपने आप को, उनका चेहरा सदा हर्षित रहता है, हर्षित रहेगा। फिर बाबा कहता है, रहेगा नहीं, रहता है। रहता है, खाली रहेगा नहीं, रहेगा तो फिर भी फ्यूचर हो जाएगा, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अब जिसको अंदर में कोई इच्छा है, चाहिए चाहिए, और वो नहीं मिलता है, तो चेहरा कैसे उदास हो जाता है? और अगर हर्षित चेहरा है, माना सर्व प्राप्ति है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है या सर्व प्राप्ति है? तो हाथ नहीं उठवाया, लेकिन बच्चों, हाँ भले हाथ उठाओ, सर्व प्राप्ति है ना, सर्व प्राप्ति, या कोई कमी है? फिर बाबा पूछते, प्राप्ति का नशा है? चलो प्राप्ति है, ये तो है, लेकिन नशा भी है? है, सदा है फिर या कभी कभी है? फिर बाबा ये भी ऐड करते, सदा है या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो ना कि पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है, ये शब्द ही नहीं असंतुष्टता, क्योंकि सर्व प्राप्ति है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आकर के इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना, और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से, और ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन से आए हैं, दोनों आए हैं। हाँ, गुलजार दादी के तन में दोनों आए हैं, परम धाम वाला भी और सूक्ष्म वतन वाला भी। तो कौन दूर से आया है, सबसे दूर कौन है? ये है बाप और बच्चों का प्यार का नजारा। बच्चे भी दूर दूर से आए हैं और बाप भी बहुत दूर से आए हैं, ये बच्चों का और बाप का प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से, सिर्फ एक शिव बाबा को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा? और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। वो तो पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा सुख? और आप बाबा कहते हैं कहाँ, और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना? हाँ, बाप दादा से बच्चे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि बाप दादा क्या चाहते हैं। हम बच्चों से बाप दादा क्या चाहते हैं, बच्चे बाप दादा से पूछते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं। अब बाबा की चाहना सुनो। बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। स्वराज्य अधिकारी, स्व पर पूर्ण राज्य। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। स्वराज्य अधिकारी बनने का वरदान, अपने इंद्रियों पर सदा विजयी और मन बुद्धि संस्कार पर विजयी, यह है स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहे हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है कि इन सभी कर्म इंद्रियों के, एक तो कर्म इंद्रिया शरीर के, दूसरा मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो, आप इनके मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो ना, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा, फिर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मैं हाथ, मैं पांव नहीं, मेरा, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार भी मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी पूरा ही अधिकार हो, मन बुद्धि संस्कार पर भी पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित है। लेकिन लेकिन क्या बाबा कहते हैं, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। मैं मालिक हूँ कर्म इंद्रियों का, मैं मालिक हूँ अपने मन बुद्धि संस्कार का, ये नशा होना चाहिए। एक तो निश्चय और दूसरा नशा कि मैं मालिक हूँ इनका। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। हाँ, मनसा द्वारा सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वजों, कौन है हम सभी? पूर्वज है ना सबके। तो हे पूर्वजों, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, वो आपदा अचानक आनी है। अचानक का खेल तो कभी भी होता है ना, अचानक आनी है। इसके लिए अब अचानक आ गई वो आपदा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्यों? हाँ, नहीं तो प्रश्न होते हैं, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, क्या, क्यों, कहा, क्या क्या सोचते रहेंगे, लेकिन क्या, क्यों, कहा, कुछ नहीं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। पुरुषार्थ उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रश्न पूछेंगे कैसे हो गया, तो फिर पुरुषार्थ करेंगे, कैसे करें, क्या करें, तो पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। क्या? क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, हाँ, अब क्या अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप, क्योंकि उस समय कुछ नहीं कर सकते, तो लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। फुल स्टॉप लगाना चाहिए क्योंकि अचानक हो गया, और उस समय आप आश्चर्य की मात्रा लगाओ, अरे ये कैसे हो गया। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है, तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हो, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए फुल स्टॉप, क्या क्यों प्रश्न नहीं, तो और भी अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है, मैं भी बिंदी, अब क्या पुरुषार्थ, मैं भी बिंदी, लगानी भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। मैं बिंदी और बिंदी लगा रही हूँ, बस ये अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं, बाबा सौगात लाए हैं वतन से, क्या, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। ये कितनी बड़ी सौगात है, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा कहाँ और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है, अनुभव है ये। हाँ, कोई ऐसी बात हो गई और आपने बाबा कहा और कैसे वो बात सुली से कांटा हो गई, है अनुभव। हाँ, बहुतों को होगा, तो सबको नहीं है, सबको है। तो बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है, जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, है ना। महाभारत में दिखाते हैं अर्जुन के रथ को कितना बार वो अटैक हुआ, लेकिन अर्जुन का रथ सलामत था। और जब युद्ध पूरा हुआ, विजयी हुए पांडव, तो अर्जुन ने भगवान को पहले कहा आप उतरिए, तो भगवान ने क्या कहा, नहीं पहले आप उतरो, क्योंकि अगर भगवान उतर जाता तो तुरंत उस वो रथ में आग लग जाती। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा आप उतरो, क्योंकि भगवान तो उस पर ही होगा, तो अर्जुन उतर जाएगा, सेफ हो जाएगा। फिर भगवान उतरा तो क्या हुआ, उस रथ को आग लग गई, तो जब तक भगवान साथ है तब तक कोई डर नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से कौन से साधन से आए हो, ट्रेन में या प्लेन में, वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हो। कोई ट्रेन से आए कोई प्लेन से आए वो तो शरीर द्वारा पहुंच गए हो, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। बहुत बच्चे आ गए होंगे ना, तो इसीलिए बाबा उनको कितना प्यार दे रहे हैं कि दिल से आप यहाँ आए हो, दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की ही है, बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाप दादा, हर बच्चा हर कर्म में अपनी स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। हर बच्चा हर कर्म में अपनी स्वराज्य की सीट पर सेट रहे। अच्छा मुरली तो इतनी है, लेकिन बाबा ने बहुत कुछ और बताया। आज पहली बार कौन आए हैं वो हाथ उठाओ। फिर कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा ये भी यहाँ भी है क्या पहली बार आए हुए? जो पहली बार आए हाथ उठाओ। अच्छा है तो खड़े हो जाओ भाई, पहली बार आए हैं। हाँ पहली बार वाले खड़े हो जाओ। अच्छा ये भी पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा, पहली बार आए बहुत है, उस समय तो बहुत होंगे, हजारों में होंगे। अच्छा जैसे पहले पहली बार आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना, पहला नंबर भी जाना है ना, जाना है पहला नंबर। आए हो पहली बार तो जाना भी पहली बार। आप पहले बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी, और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वो चांस है। हिम्मत जो रखता है उसको मदद भी मिलती है, और हिम्मत के कारण आगे बढ़ने का भी चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं है। अब ये 2011 की मुरली है, अभी लगा कि नहीं टू लेट का बोर्ड? अभी तक नहीं लगा है। टू लेट होगा तो उस समय पर सबको उड़ना होगा वापस, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। अब क्या काम करना है? बाबा की याद में रहना है और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितना जितना सेवा करेंगे, जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी। हाँ दुआओं के खातिर ही सेवा करो, भले हाँ दुआएं मिलेगी सेवा करो, और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो आगे बढ़ने का साधन क्या हुआ? दुआएं लेना, और दुआएं लेने का साधन क्या हुआ? सेवा करना। तो आपको आगे बढ़ाती रहेगी वो दुआएं। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा अब बाबा ने और बड़ा काम किया है, कौन सा? बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्र लगाते हैं, सभी तरफ बाबा अमृत वेले चक्र लगाते हैं। उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है? बाबा को सारा सृष्टि का चक्र लगाए उसके लिए उसकी क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं अमृत वेले। ट्रायल करके देखो। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना, उस समय झुटके नहीं खाना, अलर्ट रहना वरदान लेने के लिए। अगर अलर्ट नहीं रहे, एकदम सतर्क नहीं रहे, तो बाप दादा चक्र लगा के चले जाएंगे और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बच्चे देते तो हैं अमृत वेले का महत्व को महत्व, लेकिन और देते रहना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है, और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। सेवा बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते, क्योंकि सेवा है तो वरदान भी मिलता है। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशियों को बाबा खास मुबारक देते हैं। यहाँ से जाते हैं ना वापस, तो जैसे जाते हैं फिर एक 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 दिन रोज कुछ न कुछ जोड़ते जाते हैं, क्योंकि अगले साल फिर आना है, अगले साल फिर टिकट लेनी है, तो वो पैसा जोड़ते जाते हैं अगले साल की टिकट के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, पिछली मुरली में बाबा ने इशारा दिया कैसे, मेरे संस्कार कहते हो, लेकिन मेरा संस्कार असली वास्तव में कौन सा है? आदि संस्कार, अनादि संस्कार, ये संस्कार नहीं कलयुग के। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। हाँ, ये संस्कार ने क्या करे, मेरा संस्कार है, ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो अनादि और आदि संस्कार है। तो इस पर बच्चों का अटेंशन हो, तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अमृत वेले जैसे स्वमान बुद्धि में रखते हो, वैसे एक एक संस्कार के ऊपर भी अटेंशन दो कि मेरे अंदर ये संस्कार ठीक नहीं है, मुझे इसको बदलना है। तो सवेरे सवेरे उस पर भी ध्यान दो कि ये संस्कार मैं सारे दिन में फिर लाने नहीं दूंगा। तो बाबा कहते हैं उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। मानो किसके अंदर आवेश का संस्कार है, थोड़ा गुस्से का संस्कार है, तो सवेरे सवेरे अपने ऊपर अटेंशन दो कि मेरे अंदर ये संस्कार नहीं है, नहीं होना चाहिए, और फिर कैसे उस संस्कार को मिटाओ सारे दिन में अगर आता है तो। तो भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ कि हाँ बाबा, मैंने इस संस्कार पर विजय प्राप्त की। वो बाबा को सुनाओ रिजल्ट। तो विशेष अटेंशन हो जाएगा, किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, मुझे बाबा को याद करना है, और कर्म करते बाबा को याद करना है, तो जैसे याद का अटेंशन देते हो, वैसे वो जो संस्कार है थोड़ा अभी तक जो परेशान कर रहा है उस पर भी अटेंशन दो कि इस संस्कार को हम कैसे अभी बदले। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, आपको गुस्सा नहीं आया, आवेश नहीं आया, आपने सवेरे कहा कि मेरे अगर आया आवेश तो मैं नहीं करूंगा, क्रोध आया नहीं करूंगा, तो समझो उस दिन कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जो क्रोध करना भी पड़े। तो बाबा कहते हैं अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना, बाबा की मुबारक है आपको, और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी, वो धीरे धीरे वो संस्कार मिटता जाएगा। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो कि ये संस्कार आज मेरे अंदर नहीं आया। हाँ, तो अपने आप को थैंक्स दो, मुबारक दो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है, ऐसे नहीं रोज गुस्सा आता है, रोज आवेश आता है, रोज नाराज होते नहीं, कभी कभी होते हो। तो जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है, हर रोज नहीं आता है वो पेपर, बाय चांस अचानक कभी आ जाता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग तो रोज करनी है, चेकिंग रोज होनी चाहिए। तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता, ये अटेंशन भी टेंशन को खत्म करता जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, किसको कोई ड्यूटी मिली है तो इतना अटेंशन देते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं, ऐसे नहीं भूल गए। हाँ, हम लोग कभी कभी होता है ना, किसी ने मुझे कार्य दिया मैं भूल गई, फिर दो दिन के बाद उसने पूछा ये किया, अरे मैं तो भूल ही गई। तो विदेशियों को हमने देखा कभी नहीं भूलते, उनको जो कहा जो उनको दिया कार्य वो भूलते नहीं है, पर भारत में कभी कभी हम पर बहाना तो बहुत सहज देते, भूल गए तो वह सहज दे देते हम। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा ने देखा फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उस संस्कार से मुक्ति प्राप्त कर सकते जो अटेंशन देते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, हाँ ये संस्कार मुझे मिटाना है, सवेरे सवेरे बाबा से शक्ति ले लो, और फिर हाँ अगर आए तो तुरंत मिटाओ, नहीं भी आए तो थैंक्स दो कि बाबा आज ये संस्कार नहीं आया। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा, वो जो आ रहा है बार बार वो संस्कार ढीला हो जाएगा अपने आप। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे वो हो जाएगा, अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा कि वो संस्कार फिर दोबारा ना आए। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं, संगठन में निकलेगा ना, नाराज होना, थोड़ा आवेश में आना, थोड़ा मुरझाना, थोड़ा फीलिंग आना, हाँ ये सब संस्कार है। तो ये अब ऐसे नहीं आएगा अकेले होकर, जब संगठन में होते हो तब आता है। तो बाबा कहते हैं जब संगठन में होते हो तब आता है। क्यों संगठन में आता है? संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं। भक्त लोग हमारी जब हमारी जड़ चित्रों की पूजा करते हैं तो कितने अच्छे अच्छे संस्कारों का वर्णन करते हैं। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये अच्छे संस्कार है ना। तो भगत लोग हमारे जड़ चित्रों की, हमारे अच्छे संस्कारों की महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं। तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं ना। आपने ये अच्छे संस्कार संगम पर बनाए हैं तभी तो वर्णन करते हैं देवताओं के संस्कारों का। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, अपना देवताई चित्र उस समय इमर्ज करो, क्या गाते हैं। ऐसे देवता तो बनना है ना, देवता बनना है। अब वो देवता की शक्ल मुरझाई हुई हो, संगम पर मुरझाई हुई शक्ल है तो देवता की शक्ल भी मुरझाई हो जाएगी। तो ऐसे देवता बनना है ना, मुरझाई हुई शक्ल नहीं होती है ना देवताओं की। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं। अभी बाबा भारत वालों से पूछते हैं, अब पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं, हाथ उठाओ जो अपनी सफलता में पुरुषार्थ का सफलता अनुभव करते रहते हैं। सब नहीं करते क्या? सब नहीं करते, जरूर करते। तो हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। तो सब ने हाथ उठाया। वाह, बाबा कहते वाह, हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हो। हाँ, सफलता अनुभव होती है हमारे पुरुषार्थ में। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित हो ना, और निमित वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश हैं कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। हाँ, रोज कहीं ना कहीं का समाचार आता है, हाँ नए सेंटर का उद्घाटन हुआ, नई गीता पाठशाला खोली, तो वृद्धि होती रहती है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश हैं कि पुरुषार्थ में नंबर वार तो होते ही है। बाकी बाप दादा खुश हैं कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ये भी जानते हैं कि नंबर वार तो होते ही है पुरुषार्थ में, वो तो अंडरस्टूड है, पता है कि सब नंबर वार है। लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है, बाबा की मुरली में रोज बच्चों को याद प्यार मिलती रहती है। देखो बाबा ने कैसे ध्यान खिंचवाया है, देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। घर बैठे भी, आप घर में बैठे हो, मुरली पढ़ रहे हो, तो मुरली में लास्ट में आते हैं ना याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, तो बाबा तो कभी मिस नहीं करते हैं याद प्यार देना, एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हो तो, मुरली पढ़ेंगे तो लास्ट में याद प्यार गुड मॉर्निंग वो भी तो पढ़ेंगे ना, वो तो बाबा ने आपको याद प्यार दी है। परंतु रोज मुरली पढ़ेंगे तो वो याद प्यार आपको अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं रोज याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना, ये है बाप दादा के प्यार की निशानी। रोज मुरली में बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस, क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं ना, मुरली पढ़ी नहीं उस दिन, तो जो बाबा की याद प्यार है मुरली में वो भी मिस हो गई। तो मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस, सिर्फ मुरली नहीं मिस की लेकिन बाप दादा का याद प्यार मिस किया। फिर याद प्यार के साथ फिर वरदान भी मिस किया, जो बाबा का वरदान उस दिन का मिला वो भी मिस किया क्योंकि मुरली नहीं पड़ी, तो वरदान भी मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे लेकिन फिर जो समय फिक्स है, चलो कभी भी मुरली पढ़ ली, तो वो याद प्यार बाबा नहीं स्वीकार करते। समय जब जिस समय बाबा की मुरली चलती है उस समय मुरली तो पढ़ भी लेंगे लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का वो तो मिस हुआ ना, वो समय मिस हो गया। तो उमंग है इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? है कोई जो मुरली मिस करते हैं? हाथ उठाओ भाई। कोई मुरली मिस नहीं करते? वो देखो एक हाथ उठा रही है, मुरली दो, अभी दूसरा हाथ भी उठा, मुरली मिस कर रहे हैं। अच्छा, फिर डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करते हैं कारण कोई भी कारण से? नहीं है, नहीं मिस करते फॉरेनर्स ने, कोई विदेशी ने हाथ नहीं उठाया, तो भारत वालों ने उठाया। देखो कारण से कोई कारण है जो मिस नहीं करते हैं, तो उन्होंने हाथ नहीं उठाया, तो हम कभी मिस नहीं करते। एक ने हाथ उठाया, वहां भी सभा में एक ने हाथ उठाया, तो फिर बाबा ने उसको क्या कहा? अच्छा, अभी मिस नहीं करना अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हो तो कैसे भी सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो ये पक्का पक्का नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं। कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं ना, जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करनी है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें ये भी लिखो, फॉर्म भरते हैं ना मधुबन भेजते हैं फॉर्म, ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस की मुरली, वो भी फॉर्म में होना चाहिए। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ, कई मधुबन वाले भी मिस करते हैं, मुरली मिस करते हैं, तो बाबा के तो उनको भी कहते हैं हाँ हाथ उठाया। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है, जैसे खाना नहीं मिस करते हो ना, भोजन करना मिस करते हो हाँ, बस 12 बजे फट से चले जाते हैं भोजन करने, तो जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो ये भी भोजन है ना, ये कौन सा भोजन है? आत्मा का भोजन है, वो शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। अच्छा लगा, जो नए भी आए हैं आने को तो मिला ना, उनको भी ये नियम पालन करना है, जैसे और नियम है वैसे ये भी नियम है मुरली सुनने का। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, ब्राह्मण किसको कहेंगे? मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना, कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से किसी भी बात से कम नहीं करना। बात तो बात हो जाती है लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो अपना है, वो बात तो आ गई और आई और गई, पर बाप और पुरुषार्थ तो आपका अपना है, इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वो सर्विस करते रहना। अच्छा अभी क्या कहें, क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं वृंदावन का, छुट्टी लेते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते छुट्टी लेते हैं, क्योंकि बाप दादा तो आते रहेंगे, ये भी नहीं कह सकते छुट्टी लेते हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे, साथ आएंगे। अच्छा अभी समाप्ति, बाबा ने समाप्ति, क्योंकि बीच बीच में बाबा बोलते रहे। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी नहीं चल सकते, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। किसी आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव है, इसका मतलब आप प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते हैं, वो तो दूसरों को शिकार बनाएंगे, खुद कैसे शिकार बन जाएंगे, शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी न करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, संकल्प भी न करे तो उनका संकल्प भी मूर्छित हो जाए। स्लोगन, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा कौन सी होती है? नाम मान और शान की इच्छा। यह व्यक्ति इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो, उसके लिए सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, मैं सारथी हूँ, आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर वन की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं अर्थात सारथी बनते हैं, तो देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो, सारथी की स्थिति में, मालिक हो इंद्रियों का, सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।